हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 24। योन्तः सुखोन्तरारामस् तथान्तर ज्योतिरेवयः सयोगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्म भूतोदिगच्छति। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक भला बाह्य सुख को प्राप्त करने वाली बाह्य क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता है। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है, अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्य कलापों का आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता। यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है। भक्ति करते करते व्यक्ति अब उसकी चेतना पूरी तरह से अंतर्मुखी हो जाती है और यहाँ पे ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया जा रहा है जिसका अंतःकरण केवल भक्ति की क्रियाओं में ही सुख की अनुभूति करता है। जैसे कि श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का एक श्लोक है, इसमें कहते हैं कि हे गायत्री, ये 3 बार हम जप करते हैं गायत्री का, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, 3 बार स्नान करना चाहिए, मैं इस क्रिया को प्रणाम करता हूँ, पितरों को साथ देना चाहिए उसको मैं प्रणाम करता हूँ, देवताओं को सम्मान देना चाहिए उसको मैं सम्मान करता हूँ, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन मुझे क्षमा करें, मैं अब आपकी सेवा नहीं कर सकता। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर मैं कंस के दुश्मन भगवान कृष्ण का, मथुरा नाथ का मैं स्मरण कर सकता हूँ, कर पा रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है। तो जितनी भी विधि विधान है वेदों के, उनका उद्देश्य है कृष्ण का स्मरण करना और निषेधों का उद्देश्य है कृष्ण की विस्मृति ना होना। तो जब व्यक्ति की भक्ति करते करते हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तो अपने हृदय में ही भगवान की लीलाओं का स्मरण कर सकता है, बल्कि इसको हृदय में ही भगवान की लीलाओं का दर्शन होने लगता है। और जब इस प्रकार से सुख का वह अनुभव करता है तो बाह्य सुख यानी कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन के सुख उसको बिल्कुल भी आकर्षित नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक शब्द आया है ब्रह्म निर्वाण। निर्वाण शब्द प्रायः बौद्ध धर्म में हम सुनते हैं, वो निर्वाण के बारे में बात करते हैं और वो कहते हैं कि जैसे एक मोमबत्ती है और उसकी ज्योति है, तो उस ज्योति में जब तक तेल रहेगा या ईंधन रहेगा तब तक वो जलेगी। जब ईंधन रूपी यानी जो हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं जगत को भोगने की, वो इच्छा खत्म हो जाएंगी, ईंधन खत्म हो जाएगा तो लौ बंद हो जाएगी। तो यही उनका धारणा है निर्वाण की। लेकिन निर्वाण का जो कंसेप्ट है वो केवल बौद्ध धर्म में नहीं है, बल्कि बौद्ध धर्म से पहले भी है और भगवान इस बात को यहाँ पर बता रहे हैं। ब्रह्म निर्वाण मतलब भौतिक इच्छाओं की समाप्ति, बाह्य जगत से सुख भोगने की लालसा की समाप्ति, लेकिन आंतरिक सुख की अनुभूति करना और इसके द्वारा भगवान बाद में अंततोगत्वा भगवान के धाम की प्राप्ति करना, तो ये ब्रह्म निर्वाण है। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि जो व्यक्ति निर्विशेषवादी है वो भगवान कृष्ण के शरीर से निकलने वाली दिव्य तेज में समाहित होना चाहे तो वहाँ हो सकता है, और अगर कोई व्यक्ति भगवान के धाम जाना चाहे तो भगवान के धाम जाना जा सकता है अगर वो भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त है। तो एक बात इम्पॉर्टेंट हमें और समझ में आनी चाहिए कि आत्मा क्योंकि सच्चिदानंद है, आनंदमय है, इसलिए हम हर क्षण आनंद की खोज कर रहे हैं और जब वो आनंद हमको हृदय में प्राप्त नहीं होता है तो फिर वही आनंद या सुख हम बाहर के वस्तुओं में खोजने का प्रयास करते हैं, ये बात है। तो जैसे कि मान लीजिए आप गाड़ी में बैठे हैं और आपको प्यास लग रही है, और ये मान ले इस तरह से आप इमेजिन करें कि पानी की बोतल आपके गाड़ी में तो है लेकिन आपको पता नहीं है, तो बाहर आप पानी ढूंढने का प्रयास करेंगे, और मान लीजिए बाहर रेगिस्तान है, तो ये हमारी स्थिति है। अमृत की बोतल हमारी गाड़ी के ही अंदर है, हमारे हृदय में ही है, लेकिन हम लोग उनको मृग तृष्णा आप समझते होंगे, मृग तृष्णा रूपी भोगों में हम बाहर देख रहे हैं, वो जिसमें पानी का केवल एक छलावा मात्र होता है। तो भगवान यहां बता रहे हैं कि इस प्रकार से जिस व्यक्ति ने अपने हृदय में ही भगवान श्री कृष्ण से अपने संबंध को समझ लिया है, हम सभी का भगवान कृष्ण से एक संबंध है, जब व्यक्ति समझ लेता है तो उस संबंध के कारण भगवान का स्मरण होता रहता है। ये थोड़ा समझिए बात इसको, प्रभुपाद जी ने भूमिका में समझाया था कि हर समय भगवान का स्मरण करने के लिए प्रेम होना चाहिए भगवान से। जैसे हम किसी व्यक्ति से कोई भी संबंध हो, मान लो हमारा दुश्मन भी है, तो जब हम उस दुश्मन के बारे में सोचते हैं तो एक विशिष्ट प्रकार का रस हमको प्राप्त होता है, चाहे क्रोध का रस हो, चाहे वो ईर्ष्या का रस हो, चाहे द्वेष का रस हो। तो जब किसी व्यक्ति से संबंध अनुभव होता है तब हम उसके स्मरण करने में कुछ रस का अनुभव करते हैं। तो भगवान के प्रति ऐसा रस अभी हम अनुभव नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा हृदय दूषित है, लेकिन यही भक्ति की क्रियाएं, भगवान का लीलाओं का श्रवण, भगवान के नाम उच्चारण करते करते हमारा हृदय एक अंतर्मुखी होने लगता है, और हृदय में भगवान के प्रति जो हमारा संबंध है वो प्रकट होने लगता है, और फिर जब संबंध प्रकट हो जाता है तो व्यक्ति भगवान का स्मरण एक विशेष प्रकार के संबंध के द्वारा करता है, संबंध का अनुभव करते हुए करता है, और उसको उसमें बहुत रस प्राप्त होता है। ऐसे ही हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, भगवान का स्मरण करता है, श्रवण करता है, तो उसको असीमित आनंद प्राप्त होता है, और इसका बड़ा अद्भुत प्रमाण है। भक्तों ने भगवान से प्रार्थना करी जब भगवान उनके सामने आए कि भगवान हम भगवान आपके धाम भी नहीं जाना चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि हमें करोड़ों करोड़ों कान दे दीजिए ताकि हम आपकी कथा को सुन सकें। तो ये जो कथा का आस्वादन है ये हृदय में होता है, भगवान की कथा जो हमको अच्छी लगती है ये हम हृदय में से करते हैं अनुभव, भले ही वो बाहर से आ रही हो। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति इस प्रकार से अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है जब उसका चित्त अंतर्मुखी हो जाता है और वो भगवान से अपने संबंध को समझ पाता है। तो इस प्रकार की जब स्थिति आ जाती है जिसमें कोई भी भौतिक इच्छा नहीं रहती, तो वो निश्चित रूप से व्यक्ति भगवान के धाम जाएगा ही, इस जगत में भी सुखी रहेगा और भगवान के धाम की प्राप्ति भी करेगा। हरे कृष्णा।